हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह के वक्त निमानी हाउस में चहल पहल थी, क्योंकि आज धनतेरस का दिन था। सुबह की पूजा हो चुकी थी और अब सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि घर में क्या नया आना चाहिए। धनतेरस के दिन कोई भी नई चीज़ लेना शुभ माना जाता है। सब लोग शांति से बैठे थे कि अनंत ने अपना गला सही करते हुए कहा, एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ अपना ऑफिस तो डिसाइड कर चुके हैं, हमने जगह भी रेंट पर ले ली है, लेकिन हमारे पास पर्सनल गाड़ी नहीं है। मानता हूँ निमानी हाउस में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनसे हम जा सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ वेदांत भाई ने खरीदी है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी और राव्या के लिए गाड़ी ले लूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स है। और वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राव्या ने भी खुश होते हुए कहा, मेरे पास भी है और इतनी तो है कि हम एक अच्छी सी गाड़ी ले सकते हैं। ये सुनकर अनंत के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वहीं माधवी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके बेटे बहू को एक बार सोचना पड़ रहा हो इस बारे में कि क्या वो अपनी सेविंग से एक गाड़ी खरीद सकते हैं। उसने जल्दी से कहा, अनंत तुम्हारे पापा ने जो कमाया है वो तुम्हारा ही तो है, तुम ऐसा क्यों बर्ताव करते हो जैसे तुम अपने ना होकर कोई जहर हो। माना तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कर लिया है और तुम आज भी हमारे बेटे हो, हम तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं। अनंत ने जल्दी से कहा, मॉम आप तो हर बात को गलत समझ लेती हैं, ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है आप और दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं और जो भी कमा रहे हैं वो मेरे लिए ही है, लेकिन फिर भी आज तो इतना ज़्यादा शुभ दिन है तो मैं चाहता हूँ हम अपने पैसों से कुछ खरीदें। मेरे नाम पर ऑलरेडी यहाँ गाड़ी है, लेकिन राव्या के नाम पर कुछ नहीं है, तो मैं उसके नाम से गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और उसके पास अपना लाइसेंस भी नहीं है, मुझे वो भी बनवाना है। आई थिंक मुझे अभी चला जाना चाहिए ताकि मैं शाम तक सब कुछ कर लूँ। इतना बोलकर उसने एक नज़र राव्या की तरफ देखा जो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, फिर वो सोफे से उठा और फिर राव्या के पास जाते हुए बोला, तुम्हें अलग से इन्विटेशन दूँ मैं, चलो मेरे साथ। ये सुनकर राव्या जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ गई और फिर वो दोनों तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चले गए ताकि वो जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन ले और फिर अपने काम पर लग जाएं। उन्हें ऐसे जाते देखकर माधवी का तो पूरा खून ही जल चुका था, तो वहीं जिग्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ मेरा बेटा कुछ भी करे वो अपने पैसों से करे, और जिस तरीके से वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है ये देखकर तो मुझे उस पर प्राउड फील हो रहा है। माधवी ने गुस्से में जिग्नेश को घूरा जैसे कह रही हो कि उसने तो कभी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। उन लोगों की बातें फिर से शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त अनाही और रूहान भी अपने कमरे से बाहर निकले। वे आपस में कुछ बातें करते हुए एक साथ बाहर जा ही रहे थे कि निवेदिता ने जल्दी से कहा, बेटा यहाँ बैठो सबके साथ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या खरीदना है। रूहान और अनाही दोनों एक साथ चौंक गए क्योंकि वो अपनी बातों में इतनी ज़्यादा बिजी थे कि आसपास के लोगों को भूल गए थे। अनाही जल्दी से रूहान से दूरी बनाते हुए बोली, मम्मी जी एक्चुअली हमें बाहर से कुछ खरीदना है तो हम जा रहे हैं। वहीं रूहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको बाहर जाने के लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ जा रही हैं, किसी और के साथ नहीं। इतना बोलकर वो ज़बरदस्ती अनाही का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। वहीं वो और भी एक्सप्लेन करना चाहती थी ताकि निवेदिता को बुरा ना लगे, लेकिन रूहान ने उसे मौका नहीं दिया कुछ भी बोलने का। वहीं उसके इस हरकत पर निवेदिता को हंसी आ रही थी, आखिर अपनी माँ से कौन जलन महसूस करता है। रूहान को ये भी अच्छा नहीं लगता कि अनाही किसी और से बातें कर रही है। उस वक्त भी वो ज़िद्दी बच्चे की तरह उसे सबके पास से दूर ले जाता है ताकि उसकी मैडम जी सिर्फ उसी से बातें करें और उसी की तरफ देखें। अगर अनाही को कुछ एक्सप्लेन करना हो तो भी वो सिर्फ और सिर्फ रूहान से करे, किसी और से नहीं। उसे हंसता हुआ देखकर माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है निवेदिता, अपने बच्चों को अपने काबू में रखना सीखो। मुझे तो लगा था अनाही इतनी समझदार है, जैसे ही घर में आई बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, लेकिन अब दिन पर दिन ऐसा लग रहा है वो रूहान जैसी बनती जा रही है, ना दोनों आने से पहले किसी को बताते हैं ना जाने से पहले। कल भी वो रात को आए थे और किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो कहाँ गए थे। विहा जो कब से धीरे धीरे वेदांत से बातें करते हुए अपने फ़ोन में उसे ज्वेलरी दिखा रही थी, माधवी की ये बात सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से कहा, ताई जी एक्चुअली वो डेट पर गए थे, तो क्या इसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, और वो भी जीजू ने सरप्राइज़ प्लान किया था, तो अगर वो किसी को बताते तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। मुझे पता है आप लोग अभी ओल्ड हो गए हो और जनरेशन गैप की वजह से आपको ये डेट वगैरह समझ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए समझने की, आप तो सीधा ही लोगों पर ब्लेम डालने लगती हो। निवेदिता ने हैरानी से विहा की तरफ देखा और फिर वेदांत को आंखों ही आंखों से इशारा किया कि अपनी बीवी को संभाल लो, उसकी ज़ुबान काबू में नहीं रहती है। वहीं वेदांत ने जल्दी से विहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, टोमेटो कंट्रोल क्या बकवास कर रही हो। फिर उसने माधवी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रूहान और अनाही डेट पर गए थे इसीलिए वो किसी को बताकर नहीं गए, आपको हर बार उन्हें गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उठा और फिर वीहा को भी जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले गया। वीहा अभी भी चेहरा घुमाकर माधवी की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ तो उसके मन में रह गया जो वो माधवी से कहना चाहती थी, लेकिन वेदांत उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दे रहा था। वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया और जैसे ही वो गैलरी में पहुंची, उसने एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे अपने कमरे में ले जाते हुए बेड पर बिठाया और अगले ही पल दरवाजे के पास आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वीहा बेचारी भागती रह गई। फिर उसने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, आप लोग इतना क्यों डरते हो उनसे? कौन सा वो खा जाएंगे? माना वो दिखते ऐसे ही हैं जैसे खा जाएंगे, लेकिन असलियत में वो वेजिटेरियन है, वो किसी को खाते नहीं है। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वेदांत ने एक झटके से उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया और अगले ही पल एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, टोमेटो, मुझे ताईजी से डर नहीं लगता है, बल्कि तुमसे डर लगता है, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। तुम्हें पता है बच्चा, तुम सिर्फ सामने वाले को हर्ट नहीं करती हो, खुद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा लेती हो। इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? इतना बोलकर वेदांत ने आंखें बंद की और वीहा के सर से अपना सर जोड़ लिया। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल थी। वहीं वीहा को समझ नहीं आया कि वेदांत उसे डांट रहा है या प्यार कर रहा था। उसने कन्फ्यूजन में कहा, आपको बुरा नहीं लगा कि मैंने आपकी ताईजी को बुरा भला बोल दिया? वेदांत ने झुककर आहिस्ता से उसके होठों पर किस करते हुए कहा, नहीं बच्चा, मुझे क्यों बुरा लगेगा उनके लिए? वेदांत की बात सुनकर वीहा ने हैरानी से कहा, वो तो आपकी ताईजी हैं, आपको बुरा लगना चाहिए था।
वेदांत ने फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा, नहीं टमाटो, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बस तुम्हारी टेंशन होती है, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर उसने इस बार वीहा का माथा चूमते हुए कहा, आज तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी हो गई है, तुम कितनी खुश थीं सुबह, लेकिन देखो ताईजी की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो जाए। चलो फिर से ज्वेलरी देखते हैं, तुम्हें क्या खरीदना है, फिर हम भी बाकी सबकी तरह बाहर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। वेदांत की ये बात सुनकर वीहा फिर से खुश हो गई और फिर अपना फ़ोन जल्दी से हाथ में लेते हुए वेदांत को कुछ दिखाने लगी। वहीं वेदांत फ़ोन की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वीहा के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन की तरफ देख रहा था, जो वो एक्साइटमेंट में चेहरा बनाते हुए उसे बता रही थी कि उसे कौन सी रिंग ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी रिंग में क्या कमी है।